एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो वाकई दिल को छू लेती है।
जी,
मैरियन शेफर और एनी बैरोज का उपन्यास द गर्न्सी लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी।
बड़ा ही अनोखा नाम है,
है ना? और कहानी भी उतनी ही अनोखी। ये हमें ले जाती है 1946 में, मतलब दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, लंदन और गर्न्सी द्वीप के बीच।
जी, और गर्न्सी द्वीप जो चैनल आइलैंड्स का हिस्सा है, वहाँ का इतिहास बहुत लोगों को पता नहीं होता कि वहाँ 5 साल तक जर्मन कब्जा रहा था।
हाँ, और इस किताब के बनने की कहानी भी वो भी बड़ी दिलचस्प है।
अच्छा,
मैरियन शेफर वो असल में लाइब्रेरियन थी, एडिटर थी, किताबों से घिरी रहती थी। 1976 में लंदन गई थी, पर मौसम ऐसा बिगड़ा कि अचानक गर्न्सी पहुंचना पड़ा।
अरे,
वहीं उन्हें पहली बार जर्मन कब्जे के बारे में पता चला और ये बात उनके जहन में बैठ गई। फिर कोई 20 साल बाद उन्होंने इसे लिखना शुरू किया।
20 साल बाद?
हाँ, लेकिन सेहत ठीक नहीं थी, तो उनकी भतीजी एनी बैरोज, जो खुद भी लेखिका हैं,
जी हाँ, एनी बैरोज,
उन्होंने इसे पूरा करने में मदद की। पर दुख की बात यह है कि मैरियन शेफर इसके छपने से बस कुछ ही पहले गुजर गई।
ओह, ये जानकर तो किताब और भी खास लगती है। मतलब लेखिका का जुनून था ये।
बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, ये चैनल द्वीप समूह पर जर्मन कब्जे की कहानी है, इतिहास का वो हिस्सा जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है।
जी, लेकिन इसे कहने का तरीका वो बहुत अलग है।
हाँ, ये पूरी कहानी चिट्ठियों में है, टेलीग्राम है, डायरी के पन्ने हैं।
जी, एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं इसे।
सही कहा। इसका असर ये होता है कि हम कहानी को सीधे किरदारों की आवाज में सुनते हैं, उनके एहसास, उनके विचार, सब कुछ बहुत पर्सनल लगता है,
जैसे हम खुद वो चिट्ठियां पढ़ रहे हों, उनके राजदार बन रहे हों।
तो आज हमारी कोशिश क्या रहेगी? हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे, है ना? किरदारों के सफर को समझेंगे।
हाँ, उनके इमोशनल उतार चढ़ाव और जो मुख्य विचार है इसमें, जैसे साहित्य की ताकत,
मुश्किल वक्त में कैसे सहारा बनती है किताबें, इंसानी जज्बा।
जी, और कैसे अजनबी लोग भी एक मजबूत रिश्ता बना लेते हैं।
चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी खुलती है 1946 के लंदन में। हमारी हीरोइन है जूलियट एश्टन,
32 साल की लेखिका।
युद्ध के दौरान इन्होंने बड़े हल्के फुल्के मजेदार कॉलम लिखे थे, इजी बिकर स्टाफ के नाम से। काफी हिट हुए थे वो।
जी,
लेकिन अब युद्ध खत्म हो गया है और जूलियट को लग रहा है कि मतलब कुछ कमी है उसके लिखने में, उसकी जिंदगी में।
हाँ, एक खालीपन सा महसूस कर रही है वो, कुछ गहरा, कुछ ज्यादा सार्थक ढूंढ रही है।
जैसे कोई धुन तो है पर सुर नहीं मिल रहा।
बिल्कुल, और तभी एक चिट्ठी आती है बिल्कुल अचानक।
कहाँ से?
गर्न्सी द्वीप से।
लिखने वाले हैं डॉर्सी एडम्स, एक सुअर पालक। लग, और उनका जूलियट से क्या काम?
उन्होंने जूलियट की कोई पुरानी किताब पढ़ी थी जिसमें उसका नाम पता लिखा था। वो किताब थी चार्ल्स लैम की एसेज ऑफ एलिया।
ओह, चार्ल्स लैम, 19वीं सदी के निबंधकार।
जी, तो डॉर्सी को लैम की और किताबें चाहिए थीं और उन्होंने मदद के लिए जूलियट को लिख दिया।
और उस चिट्ठी में उस अजीब से नाम का जिक्र भी था।
हाँ, द गर्न्सी लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी।
पोटैटो पील पाई सोसाइटी, मतलब आलू के छिलकों वाली पाई। ये कैसा नाम हुआ लिटरेरी सोसाइटी का?
यही बात जूलियट को भी खटकी। डॉर्सी का वो सीधा साधा अंदाज और ये अनोखा नाम, बस जूलियट की जिज्ञासा जाग गई।
और यहीं से शुरू हुआ चिट्ठियों का वो सिलसिला
जो इस उपन्यास की जान है। जूलियट जवाब लिखती है, फिर डॉर्सी, फिर सोसाइटी के और सदस्य जुड़ते जाते हैं।
कौन कौन थे सदस्य?
आइसोला प्रिबी हैं, जो जड़ी बूटियों की शौकीन है, थोड़ी क्या कहते हैं, सनकी सी।
अच्छा।
एबन रैमजे हैं, एक समझदार मछुआरे।
हर चिट्ठी से गर्न्सी की जिंदगी और उस सोसाइटी का एक नया पहलू खुलता होगा।
जी, और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये सोसाइटी बनी कैसे, ये आलू की छिलके वाली पाई का क्या चक्कर है।
हाँ, ये राज क्या है?
और राज खुलता है तो मतलब कमाल का है, पता चलता है कि ये सोसाइटी तो एक झूठ से शुरू हुई थी।
झूठ से? कैसे?
देखिए, जर्मन कब्जे के दौरान रात में बाहर निकलना मना था, कर्फ्यू था।
हाँ।
तो एक शाम एलिजाबेथ मिकेना, डॉर्सी, एबन, आइसोला और एक और दोस्त, ये लोग चोरी छिपे भुना हुआ सुअर खाके लौट रहे थे।
ओ।
जबकि सुअर पालना मना था उस वक्त।
बिल्कुल।
और जर्मन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अब तो सजा पक्की थी।
फिर?
तभी एलिजाबेथ, जो बहुत तेज दिमाग थी, उन्होंने फौरन एक कहानी बना दी। बोली कि हम लोग तो अपनी लिटरेरी सोसाइटी की मीटिंग से आ रहे हैं।
वाह, मौके पर चौका।
सैनिकों ने पूछा, सोसाइटी का नाम क्या है? अब उस वक्त शायद पेट में वही आलू के छिलके घूम रहे थे जो उस भुने सुअर के साथ खाए होंगे मजबूरी में।
तो नाम पड़ गया
द गांजी लिटरेरी एंड पोटेटो पील पाई सोसाइटी।
कमाल है, जान बचाने के लिए एक बहाना। लेकिन ये सिर्फ बहाना ही रहा या कुछ और भी हुआ?
यही तो कहानी गहरी होती है। वो बहाना, वो झूठ धीरे धीरे सच बन गया, एक जरूरत बन गया।
मतलब वो सच में मिलने लगे?
हाँ, वो वाकई मिलने लगे, किताबें पढ़ने लगे, उन पर बातें करने लगे। सोचिए जला माहौल कैसा था, भूख, डर, अपनों को खोने का दुख, हर तरफ दुश्मन।
ऐसे में ये मिलना जुलना, किताबों की बातें, ये तो जीने का सहारा बन गया होगा।
बिल्कुल, ये सिर्फ दिमागी खुराक नहीं थी, ये हिम्मत बनाए रखने का, हंसने बोलने का, अकेलेपन से लड़ने का तरीका था। उनका अपना एक छोटा सा खुफिया विद्रोह था ये।
किताबों से विद्रोह, बहुत खूबसूरत बात है।
तो जूलियट को चिट्ठियों से ये सब पता चलता है, कब्जे की मुश्किलें और उसमें भी लोगों की हिम्मत, उनकी दया। जी, और मुश्किल हालात में भी मजाक करने की उनकी आदत।
हर चिट्ठी एक पहेली का नया टुकड़ा सामने रखती है।
और जैसे जैसे जूलियट इन कहानियों में डूबती है, उसकी अपनी जिंदगी की पहेली भी सामने आने लगती है।
हाँ, एक तरफ वो लेखिका है जिसे लगता है कि अरे वाह, क्या जबरदस्त कहानी मिल रही,
लेकिन दूसरी तरफ
वो इन अजनबी लोगों से, उनके दर्द से, उनके हौसले से एक गहरा रिश्ता महसूस करने लगती है। ये अब सिर्फ एक स्टोरी नहीं रहती,
खास तौर पर एलिजाबेथ मैकेना के जिक्र से, है ना?
बिल्कुल, सोसाइटी की जान, सब उसकी हिम्मत, उसकी जिंदादिली की बातें करते हैं, पर आवाज में एक दुख भी होता है।
और एलिजाबेथ है कहां? वो द्वीप पर नहीं है।
यही सवाल जूलियट को बेचैन कर देता है, क्या हुआ उसके साथ? ये कहानी का एक भावनात्मक केंद्र बन जाता है।
और इसी बाहरी खोज के साथ साथ जूलियट के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है। जी, लंदन में उसका इंतजार कर रहा है एक चमकता हुआ भविष्य। एक अमीर प्रकाशक है, मार्क रेनॉल्ड्स, जो उसे शादी करना चाहता है। पार्टियां हैं, ग्लैमर है,
समाज की उम्मीदें हैं।
हाँ, लेकिन क्या ये सब उसे वो सुकून, वो सार्थकता दे पाएगा जिसकी उसे तलाश है? या फिर गननजी के ये सीधे साधे लोग, उनकी सच्ची कहानियां, वो उसे ज्यादा खींच रही हैं?
एक कश्मकश है लंदन की ऊपरी चमक और गननजी की गहरी सच्ची जिंदगी के बीच।
और एलिजाबेथ मैकेना, वो किरदार जो है भी और नहीं भी।
हाँ, शारीरिक रूप से मौजूद नहीं, पर शायद सबसे ताकतवर। हम उसे दूसरों की यादों से, बातों से, चिट्ठियों से ही जानते हैं।
एक ऐसी औरत जो हिम्मत और मोहब्बत का दूसरा नाम थी, जिसने सोसाइटी को शुरू किया।
पर लोग उसके बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करते? कुछ झिझक सी क्यों है? ये रहस्य जूलियट को चैन नहीं लेने देता।
और फिर जूलियट एक बड़ा फैसला लेती है।
क्या?
वो गरंजी जाने का फैसला करती है, लंदन की उस भाग दौड़ से, मार्क रेनॉल्ड्स के उस सुनहरे पिंजरे से निकलकर।
अब वो सिर्फ कहानी की तलाश में नहीं जा रही।
नहीं, अब वो उन लोगों से मिलने जा रही है जिन्हें वो अपनी चिट्ठियों से दोस्त मान चुकी है। उसका इरादा है कि वो द टाइम्स अखबार के लिए उनके युद्ध के तजुर्बों पर लिखेगी।
ये तो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ।
गर्नीजी पहुंचना, जगह बदलना नहीं, एक दुनिया बदलना।
बिल्कुल, और वहां पहुंचकर उन चेहरों को देखना जिन्हें सिर्फ शब्दों में जाना था, यकीनन गहरा अनुभव रहा होगा।
कौन कौन मिला उसे?
शर्मिला साहब पर सोने के दिल वाला डॉन्सी,
थोड़ी अजीब पर बहुत प्यारी आइसोला,
जिंदगी के तजुर्बों वाला समझदार एबिन, चट्टान की तरह मजबूत इरादों वाली अमेलिया,
और किट, एलिजाबेथ की बेटी।
हाँ, किट मैकेना, 4 साल की बच्ची, शुरू में थोड़ी सहमी हुई, जंगली सी लगती है, शायद बचपन के सदमों का असर।
लेकिन जूलियट और किट के बीच
एक फौरन कनेक्शन बन जाता है, एक अनदेखा सा गहरा रिश्ता, जैसे कोई खोई हुई कड़ी मिल गई हो दोनों को। तो जूलियट गर्नजी में रहने लगती है, वहां की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, और वहीं धीरे धीरे एलिजाबेथ की कहानी सामने आती है।
जी, परत दर परत, लोगों की बातों से, पुरानी चिट्ठियों से, जो गवाहियां पहले दबी हुई थीं, वो अब खुलने लगती हैं।
और क्या पता चलता है?
पता चलता है कि एलिजाबेथ को एक जर्मन अफसर से मोहब्बत हो गई थी, क्रिश्चियन हेलमैन, एक नेक दिल इंसान।
जर्मन अफसर से कब्जे के दौरान?
हाँ, और किट उन्हीं दोनों की बेटी है।
ओह।
क्रिश्चियन की मौत के बाद एलिजाबेथ ने अपनी जान खतरे में डालकर टॉड ऑर्गेनाइजेशन के एक भूखे प्यासे गुलाम मजदूर की मदद की थी।
टॉड ऑर्गेनाइजेशन, ये नाजियों का वो संगठन था ना जो जबरदस्ती मजदूरी करवाता था।
जी, बस इंसानियत दिखाने की यही नेकी उस पर भारी पड़ गई।
उसे पकड़ लिया गया।
हाँ, गिरफ्तार करके जर्मनी भेज दिया गया, रेवेन्सब्रुक कॉन्सेंट्रेशन कैंप।
रूह कांप जाती है ये नाम सुनकर।
और फिर कहानी का सबसे दर्दनाक सच सामने आता है। कैंप से बचकर आई एक औरत बताती है कि एलिजाबेथ की मौत कैसे हुई।
कैसे?
वो कैंप के एक गार्ड से किसी दूसरे कैदी को बचाने की कोशिश कर रही थी और उसे गोली मार दी गई।
हे भगवान, मतलब उसकी मौत भी वैसी ही थी जैसी उसकी जिंदगी, हिम्मत और दूसरों के लिए बलिदान।
बिल्कुल।
इस सच्चाई ने जूलियट को अंदर तक हिला दिया होगा। क्या इससे उसे अपनी राह साफ नजर आई?
हाँ, एलिजाबेथ की कहानी ने जैसे उसे आईना दिखा दिया, उसे एकदम साफ हो गया कि लंदन की वो चमकीली खोखली दुनिया उसके लिए नहीं है। असली चीज तो प्यार, हिम्मत, इंसानियत है जो उसे गर्नीजी में मिली।
और तभी मार्क रेनॉल्ड्स वहां आता है।
जी, कहानी का क्लाइमैक्स। मार्क आता है जूलियट को वापस ले जाने, मनाने, लेकिन वो ना तो द्वीप की रूह को समझ पाता है ना लोगों के दर्द को।
और जूलियट?
जूलियट उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, साफ इनकार।
और वो अपना आखिरी फैसला लेती है
गर्नीजी में रुकने का, किट को गोद लेने का, उस बच्ची को माँ का प्यार देने का और खुद के लिए वो परिवार पाने का जो उसके पास कभी नहीं था।
ये तो बहुत बड़ा कदम था।
और उपन्यास खत्म होता है एक और चिट्ठी से।
किसकी चिट्ठी?
इस बार जूलियट लिख रही है डॉसी एडम्स को।
डॉसी को?
उसे एहसास हो गया है कि वो डॉसी से प्यार करती है और वो बड़े ही सीधे सच्चे अंदाज में, मतलब बिना किसी लाग लपेट के, उसे शादी के लिए पूछती है।
वाह, कहानी, घर, अपनेपन, उसकी तलाश पूरी हुई।
बिल्कुल, एक बहुत ही सुकून देने वाला अंत।
ये कहानी अपने अंदर इतने सारे गहरे मतलब समेटे हुए है। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, साहित्य की ताकत।
जी,
कैसे चार्ल्स लैम की एक किताब जूलियट और गर्नीजी को जोड़ देती है, और वो लिटरेरी सोसाइटी, वो तो जैसे मिसाल है।
हाँ, कि पढ़ना सिर्फ अकेले का काम नहीं, ये लोगों को जोड़ता है, समुदाय बनाता है, मुश्किल वक्त में एक पनाह देता है
और दूसरों के दर्द को समझने का नजरिया भी देता है।
कब्जे के वक्त में शायद ये पढ़ना ही उनका सबसे बड़ा हथियार था, एक तरह का दिमागी और रूहानी विद्रोह।
एक किरदार कहता भी है ना, जब चिपकने के लिए और कुछ नहीं था तब हम किताबों और एक दूसरे से चिपके रहे।
क्या खूब लाइन है। और फिर है इंसानी हौसले की बात।
हाँ, वो रेजिलियंस, भूख, डर, जुल्म, सब कुछ सहकर भी इंसानियत को, मोहब्बत को, मजाक करने के अंदाज को जिंदा रखना।
वो पोटैटो पील पाए इसी का सिंबल है, मतलब कुछ भी नहीं से कुछ बना लेना, उसे भी बांट लेना, ये जिंदगी की जिद है।
और पाए गए परिवार की बात भी इसमें, फाउंड फैमिली।
जी, सोसाइटी के लोग खून के रिश्तेदार नहीं है, पर मुश्किलों ने, प्यार ने उन्हें असली परिवार बना दिया है।
और जूलियट जो खुद अनाथ थी, उसे असली अपनापन, असली घर इसी अनोखे समुदाय में मिलता है।
ये दिखाता है कि परिवार सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी बनता है।
साथ ही ये किताब युद्ध को सिर्फ अच्छा बनाम बुरा ऐसे नहीं दिखाती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें नैतिक दुविधाएं हैं, जटिलताएं हैं, जैसे क्रिश्चियन हिलमैन का किरदार, वो नेक जर्मन अफसर, या वो द्वीपवासी जिन्हें जिंदा रहने के लिए थोड़ी बहुत सांठगांठ करनी पड़ी होगी।
हाँ, ये दिखाता है कि युद्ध में इंसान कितने मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर हो जाते हैं। इतिहास सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं बनता,
आम इंसानों की छोटी छोटी कहानियों, उनके संघर्षों, उनकी मजबूरियों से बनता है।
और आखिर में कहानी कहने का महत्व, गवाही देने का।
जी, जूलियट की यात्रा यही तो है, एक कहानीकार की जिम्मेदारी, दूसरों के अनुभव सुनना, उन्हें लिखना, दुनिया को बताना, ताकि वो दर्द, वो हिम्मत भुलाई ना जाए।
ये उपन्यास खुद चैनल आइलैंड्स के कब्जे के इतिहास की एक गवाही बन जाता है।
शैली की बात करें तो वो एपिस्टलरी फॉर्म वाकई कमाल का है, चिट्ठियों से कहानी कहना।
एक अलग ही किस्म की इंटिमेसी, नजदीकी महसूस होती है। ऐसा लगता है हम जूलियट के साथ ही सब कुछ जान रहे हैं, पहेली सुलझा रहे हैं।
और हर किरदार को अपनी आवाज मिलती है, अपना नजरिया रखने का मौका।
हाँ, और हर आवाज कितनी अलग है। जूलियट की बातों में वो विट है, डॉसी के शब्दों में सादगी और गहराई है, आइसोला की बातों में वो अजीब सा चार्म है।
जी, ये किरदारों को जिंदा कर देता है और पढ़ने का मजा भी बढ़ाता है। लगता है जैसे हम उन्हें सुन रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे।
प्रतीक भी कितने अच्छे हैं, पोटैटो पील पाए, चार्ल्स लैम की किताबें।
और कहानी का जो टोन है उसमें हास्य और मोहब्बत भी है, और कब्जे की भयावहता और दुख भी, दोनों का संतुलन कमाल का है।
ये दिखाता है कि गहरे सदमों से उभरने के लिए भी इंसान हंसी और रिश्तों का सहारा लेता है।
बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें शायद यही याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद बाकी रहती है, इंसानियत और मोहब्बत की रोशनी मिल सकती है।
और ये भी कि कहानियाँ, किताबें और थोड़ी सी हमदर्दी, ये बहुत बड़े जख्म भर सकती हैं और दिलों को हमेशा के लिए जोड़ सकती हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।